ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। आज की इस सवेरे की कथा में आप सबका स्वागत है। बरसाना सेवा प्रकल्प में भी आपका स्वागत है। हम सब आपका धन्यवाद देना चाहते हैं, आप इन दूर से समय निकालकर राधा रानी की सेवा के लिए, उनके धाम वासियों के लिए यहाँ पर आए हैं। ये वर्ष जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि श्रील प्रभुपाद 50 साल पहले यहाँ से अमेरिका जाने के लिए निकले थे। 1922 में उनकी मुलाकात अचानक उनके गुरुदेव से हुई एक छत पर कलकत्ता में, और तब उन्होंने उनको आज्ञा दिया, क्यों नहीं आप अंग्रेजी भाषा में पश्चिम जगत में प्रचार करें इस भागवत धर्म का, कृष्ण प्रेम के धर्म का, क्यों नहीं आप प्रचार करते हो, आप पढ़े लिखे हो, आपको अंग्रेजी भाषा में हमारे कृष्ण प्रेम का सिद्धांत पश्चिम जगत में प्रचार करना चाहिए। तो समय ये बड़ी आज्ञा थी, उस समय तो वो जवान थे। उसके बाद में उन्होंने मन में उनको अपने गुरु के रूप में ले लिया, ये मेरे गुरु हैं। वो देखते हैं कि पहली बार जीवन में मैं परास्त हुआ वाद विवाद में, डिबेट में, मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं परास्त हुआ अपने गुरु जी के हाथों, और हृदय में उनको गुरु मान लिया। फिर गृहस्थ बने, व्यवसाय शुरू किया, बच्चे हुए। 1933 में उन्होंने उनसे दीक्षा लिया, अभय चरणारविंद दास। और 1944 में उन्होंने भागवत यानी बैक टू गॉड हेड, जो आज हम लोग मराठी में जाऊ देवाचिया गावा, भगवत दर्शन, इस प्रकार के मैगजीन्स निकालते हैं, वो उन्होंने 1944 में शुरू किया। उसके बाद उन्होंने परिवार छोड़ा, संन्यास लिया। इस बीच जब वो अपने गृहस्थी को और व्यवसाय को चला रहे थे, उनको कई बार स्वप्न आए, उनके गुरुदेव स्वप्न में आकर उसी आज्ञा को दोहराते रहे कि आपको पश्चिम जगत जाना है, अंग्रेजी भाषा में भागवत धर्म को प्रचार करना है। और बाहरी दृष्टि से श्रील प्रभुपाद अपने परिवार को संभाल रहे थे, उनका पालन पोषण कर रहे थे, व्यवसाय कर रहे थे, भारत भर में यात्रा करते थे अपने बिजनेस के लिए, कुछ समय बंगाल के विकल्प में नौकरी करते थे, लेकिन हृदय के गहराई में उनके हमेशा एक ही चिंतन चलता था कि कैसे मैं मेरे गुरु जी की आज्ञा का पालन करूं। विचार करते रहे कि अभी बच्चे छोटे हैं, व्यवसाय भी नया नया है, उनको संभालना है। हम सुनते हैं कि उनको एक अपाहिज बालक भी था जिनकी भी वो देखभाल करते थे, और यथावकाश आप सब जानते हैं कि उनके पत्नी के सहयोग न होने की वजह से एक दिन वो सारे कर्तव्यों को कर चुके थे, उस दिन वो घर से निकल गए, जैसे हमेशा निकलते थे यात्रा करने के लिए वैसे निकल गए, वापस लौट के नहीं आने के लिए। फिर वो मथुरा आए और उन्होंने केशव गौड़िया मठ में संन्यास ग्रहण किया, वहाँ के महाराज से, केशव प्रज्ञा गोस्वामी महाराज, जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के शिष्य थे, उन्होंने उनको संन्यास दिया। उसी चिंतन में थे वो कि कि मुझे मेरे गुरु जी की आज्ञा पूर्ण करनी है, गुरु जी ने जो सेवा दिया है उसे पूर्ण करना है। संन्यास लेकर फिर वो सोचने लगे कि मैं कौन सा ग्रंथ ले जाऊं सबसे बढ़िया। तो उनके मन में सबसे पहले और सब सर्वोत्कृष्ट विचार आया कि श्रीमद् भागवत का अंग्रेजी में अनुवाद किया जाए। तो वो कुछ समय वृंदावन में एक मंदिर है राधा वंशी गोपाल, वो जमुना किनारे में एकदम लगकर है, वहाँ पर 5 रुपया किराए से वो रहते थे पहले मंजिल पर जमुना जी को निहारते हुए। उन्होंने वहाँ पर भगवत गीता का अनुवाद किया, श्रीमद् भागवत का अनुवाद शुरू किया। तभी निर्मल चंद्र गोस्वामी के पिताजी जो राधा दामोदर मंदिर के उस समय गोस्वामी थे, और निर्मल चंद्र जी बालक थे, अभी वो बड़े बुजुर्ग हुए 75 साल के, तो उनके पिताजी ने उनको निमंत्रण दिया कि आइए हमारे मंदिर में रहिए, क्योंकि राधा दामोदर मंदिर जो है वहाँ पर रूप गोस्वामी ने भजन किया है बहुत समय के लिए। रूप गोस्वामी ने उनकी समाधि भी वहाँ पर बनाई गई है, जीव गोस्वामी वहाँ पर रहे हैं, जीव गोस्वामी ने वहाँ भजन किया है। उस मंदिर में 6 गोस्वामी पहले और रूप गोस्वामी के जाने के बाद बाकी के जो गोस्वामी थे वो जीव गोस्वामी के नेतृत्व में वहाँ पर बैठकर चर्चा करते थे कि प्रचार कैसे करना है। तो क्यों नहीं हमारे मंदिर में आ पाते, तो उनके प्रेम के वश श्रील प्रभुपाद जी उस मंदिर से राधा दामोदर मंदिर में शिफ्ट हो गए। अब इसके आगे की बात आपको बड़े ध्यान से सुनना है, वो ये है कि वहां पर उनको अभी तो वो परिवार के बंधन से मुक्त हो गए थे, फ्री हो गए थे, अपना कर्तव्य निभा चुके थे, और इसी विचार पर जो उन्होंने कितने साल तक इसका चिंतन किया उसी विचार को और गहराई से वो चिंतन करने लगे और उसको तैयारी भी करने लगी। उसको कहते हैं लाइफ टाइम इन प्रिपरेशन, कितने साल उन्होंने इस बात का चिंतन किया। और फिर 2 कमरे मिले उनको राधा दामोदर मंदिर में, एक कमरे से खिड़की से रूप गोस्वामी की समाधि का दर्शन करते थे वो प्रसाद लेते वक्त, और एक कमरा एकांत में था, वहाँ पर मेज था, बैठकर मेज पर अनुवाद करते थे। प्रथम ग्रंथ उन्होंने बनाया, प्रथम स्कंद का एक विभाग बनाया उन्होंने, उसको छापा, उसको रोड पे खड़े रह के बेचा, हाँ उधार लेकर उसको बनाया, फिर दोबारा आए, फिर दोबारा लिखा, फिर तीसरा लिखा, 1 man army, हाँ उधारी भी उनसे लेनी है, छापना भी है। वो पूछते थे क्यों कर रहे हैं आप, पैसे तो है ही नहीं आपके पास। राधा दामोदर मंदिर के जो गोस्वामी जो अभी हैं वो बताते हैं कि श्रील प्रभुपाद को हम दोपहर का जो लंच महाप्रसाद राजभोग राधा दामोदर जी का वो उनके कमरे के बाहर रखते थे, और रात तक वो वही पड़ा रहता था। दिन भर श्रील प्रभुपाद जी अपनी सुध बुध को भूल कर श्रीमद् भागवत के श्लोकों का अनुवाद और तात्पर्य लिखते थे और इतने मग्न रहा करते थे, उसको अंग्रेजी में कहते हैं एब्सॉर्प्शन। रूप गोस्वामी भी भक्ति रसामृत सिंधु में ये भाव का वर्णन करते हैं, टू बी एब्सॉर्ब्ड, भगवत सेवा में कैसे अपने आप को मग्न रखना है। गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते कोरिया ऐक्य आरना कोरी हो मने आशा। इस शिष्य को कैसा होना चाहिए, जो सेवा मिलती है गुरु जी के मुख से उस पर पूरा उसका 100% चिंतन है। जैसे आप एक लेंस लेंगे, हाँ मोटा सा, और वो सूरज की रोशनी में रखेंगे तो वो क्या करता है, सूरज की किरणों को एक जगह केंद्रित करता है। उधर आप माचिस की कंडी रखेंगे तो तुरंत अग्नि लग जाएगी, है ना, बाहर रखेंगे तो अग्नि आएगी क्या माचिस कांडी से, नहीं आएगी। जैसे ही आप लेंस रखोगे तो सूरज की किरणों को वो एकत्र करेगा, एक जगह लेके आएगा, और तो वहां पर आप वो रखेंगे फॉस्फोरस, तुरंत अग्नि लग जाएगी। उस तरह से एक भक्त के हृदय में मन में बुद्धि में सेवा का चिंतन होना चाहिए, छोटी सेवा हो या बड़ी सेवा हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब मैं उसका अनुवाद और तात्पर्य लिखता था, वो मेरे भक्तिमय जीवन के अति आनंद का अनुभव मेरे लिए। माई राइटिंग माई परपोर्ट्स आर माई स्पिरिचुअल एक्सटसीज, ऐसे वो कहते हैं। बहुत गहरी बात है इसमें। अपनी सेवा में अपने आत्मा आनंद को देखना, ये एक श्रेष्ठ भक्त का लक्षण है। उसकी सेवा ही उसके जीवन के आनंद का स्रोत है, समाधान का स्रोत है, और बाकी सब कुछ उसके लिए तुच्छ है। फिर रात को जब अपना दिन भर का चिंतन, मग्नता समाप्त करके जब निवृत्त होकर बाहर आते थे, देखते थे अरे महाप्रसाद का थाली, फिर उसको पाते थे। मतलब कई बार तो वो भूखे रहते थे, उनको याद ही नहीं प्यास की, भूख की, और निद्रा की, और विश्राम की। इतनी मग्नता जिसको सेवा में होती है, उसको तो दिव्य आनंद प्राप्त होना ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। There is no doubt that one will not receive spiritual happiness। तो हम लोगों को इसी बात पर चिंतन करना है कि 250 लोग अभी यहाँ पर हैं और 200 आएंगे। हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ सेवा तो मिले ना। Everybody has some service, big, small, whatever। उस सेवा पे हम लोगों को अपने आप को एकाग्र करना है। एकाग्र मतलब वन पॉइंटेड, एक अग्र, एक पॉइंट पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। जो सेवा हमको मिली है, वो कैसे हम और अच्छी तरह से, और अच्छी तरह से, हृदय से, मन से, बुद्धि से, तन से, विचारों से, भाव से कैसे हम करें, इस पर हमको चिंतन करना है। उसी सेवा के माध्यम से आपका राधा और कृष्ण से संपर्क होने वाला है। वही आपका उनके साथ संबंध जुड़ने का एक मेव रास्ता है। चलिए प्रभुपाद उसके बाद में, जब सब यात्री चले जाते हैं राधा दामोदर मंदिर से, शयन दर्शन हो गया है, मंदिर बंद हो गया है, तो बाहर आते थे, प्रसाद पाते थे, और आंखों में आंसू लेकर राधा दामोदर के मंदिर के प्रांगण में, जहां पर रूप गोस्वामी की समाधि और भजन कुटी थी, उसको झाड़ू लगाते थे। ये कौन बता रहे हैं? निर्मल चंद्र गोस्वामी हमको बताते थे। कभी कभी लोई बाजार में जाके भिक्षा भी करते थे। लोई बाजार के दुकानदार के मालिक जो हैं दुकान के, वो भी हमको बताते हैं कभी कभी वहां भिक्षा भी करते थे। और उन्होंने 3 साल वहां पर बिताए इसी एकाग्रता के ऊपर कि मुझे जल्द से जल्द विदेश जाना है और पश्चिम जगत में प्रचार करना है। और उनको ये भी भरोसा नहीं था कि वो कितने साल जिएंगे, क्योंकि वैसे भी उनकी अवस्था 68-69 साल की उस समय थी, तो उनको पता नहीं था वो कितने साल जिएंगे। लेकिन उनको ये इच्छा थी कि मैं जाने के पहले जरूर मेरी गुरुजी की दी हुई आज्ञा और सेवा को पूरी करके जाऊंगा। तो उन्होंने क्या किया, वो कहते हैं कि मुझे जो कुछ कहना था वो सब मैंने प्रथम स्कंद के 3 खंड के तात्पर्यों में लिख दिया। व्हाटएवर आई वांटेड टू से आई रोट डाउन एज परपोर्ट्स ऑफ फर्स्ट 3 वॉल्यूम्स ऑफ फर्स्ट कैंटो। आगे मिला तो बोनस। और उसके बाद में जब उन्होंने 3 खंड जब पूर्ण किए, तो फिर वो यहाँ से, बड़ी लंबी कथा है, वो कैसे कैसे सुमती महाराज जी को मिले। उसको मराठी में एक शब्द कहते हैं चिकाटी, टेनेसिटी, परसिवेरेंस। वो तो ना ही कर रहे थे उनको सुमति मुरार जी, मैं नहीं भेजूंगा आपका, वो तो वृद्धावस्था में है, वहां पर ठंड कितनी होती पता नहीं है आपको, आपका देहांत हो सकता है, इतनी ठंड वहां पर है, इतनी बुढ़ी अवस्था में आप जाएंगे तो। लेकिन रोज उनको भागवत सुनाते थे, और एंड में उनका एक बोलते ना ध्रुपद गीत में होता है ना, गीत में एक लाइन बार बार दोहराते थे, मुझे अमरीका जाना है, एक टिकट दे दो। तो उनकी जिद को देखकर, उनकी निश्चय को देखकर, किसी भी स्थिति में, शरीर बूढ़ा है, वृद्धावस्था है, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, कोई साथी नहीं, कोई धन नहीं, कोई अनुयायी नहीं, कोई संस्था नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, कैसे करेंगे, इसके पूरे प्रतिकूल स्थिति को होते हुए भी उनका निश्चय ढला नहीं। तो दूसरी बात यह है कि सेवा में, सेवा करने के लिए निश्चय की आवश्यकता होती है, क्योंकि सेवा हर समय आसान नहीं होती है। अधिकतर कलयुग में भगवान की सेवा करना बहुत कठिन होता है, प्रकृति की तरफ से, माया की तरफ से बहुत परीक्षाएं आती है, उसमें बहुत कठिनाई आती है। लेकिन इनका निश्चय इतना गहरा था, उनको सुमति मोरारजी का विरोध भी रोक नहीं सका। सुमति मोरारजी एक तरह से क्या कहते हैं, सरेंडर हो गई। शी सरेंडर्ड, ठीक है आपको देते हैं टिकट। एक उसके बाद भी उसका मार्ग इतना आसान नहीं था। दो हार्ट अटैक उनको आए। हमारे आपके अंदर इतना निश्चय होता, इतना मग्नता होती, अगर हमको हार्ट अटैक आता बोट में तो हम उधर बॉस्टन हार्बर में पहुंचते, लौट के आते, बोले ये तो मेरा काम नहीं अभी, मेरा हेल्थ। और कोई वापस भी आते, वो कोई उनको टोकता नहीं, क्या महाराज जी आप फेल हो गए, ऐसे नहीं बोलते। तुम सही बात है, इतनी उम्र में उनको हार्ट अटैक आया, कैसे कर सकते हैं। उसके बावजूद भी उनका निश्चय ढला नहीं। उनके कविता में वो लिखते हैं कि मैं आज थोड़ा ठीक हूं, कल दर्द हुआ था मुझे, आज थोड़ा ठीक लग रहा है, कल मुझे उल्टियां हो रही थी, बहुत चक्कर आ रहा था, आज मुझे दृष्टांत हुआ, ऐसे लिखते हैं। दृष्टांत हुआ कि श्री कृष्ण भगवान हमारे संप्रदाय के सारे आचार्यों के साथ में उन्होंने दर्शन दिया, और श्री कृष्ण भगवान ने इस बोट का जो कप्तान पद है हाँ उसको स्वीकार लिया है, ही हैज टेकन दी कैप्टन पोजीशन। अब मुझे मन में कोई संदेह नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है कि मैं निश्चित रूप में अमेरिका पहुंचूंगा। और आगे बड़ी लंबी कहानी है, तो इसलिए प्रभुपाद जी का ये जो उदाहरण है ये हमारे लिए बरसाना कैंप में बहुत ही समर्पक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट, कि सेवा में कैसे मन लगाना चाहिए। जैसे अर्जुन को बताया गया था कि आपको ये पक्षी को मारना है, क्या दिखता है आपको, तो उन्होंने कहा कि मुझे पक्षी के बाएं आंख की पुतली दिख रही है। बहुत लोगों ने कहा कि बादल दिख रहे हैं, पेड़ दिख रहा है, शाखा दिख रही है, पत्ते दिख रहे हैं, बहुत सारा पक्षी दिख रहा है, लेकिन अर्जुन ने केवल ऐसा उत्तर दिया, एक ही व्यक्ति ने, कि मुझे पक्षी के बाएं आंख की पुतली दिखाई दे रही है जिसको मुझे छेदना है। इसे कॉल्ड एज प्रिसिजन। हाँ, जो करना है उसके बारे जब हम चिंतन करते हैं तो भगवान हमें बुद्धि देते हैं, और ये बुद्धि के द्वारा बताते हैं कि आपको वो सेवा कैसे आप कर सकते हो उत्कृष्ट तरीके से। श्यामानंद गोस्वामी, जिनका पहले नाम दुखी कृष्ण था, वो जब अंबिका कालना में अपने गुरुदेव हृदय चैतन्य महाराज से दीक्षा लेकर जब ब्रज में आए उनकी आज्ञा के अनुसार, तो वो ब्रज में बुहारी करते थे। हाँ, कल मैंने बताया ना आपको, मदन मोहन जी यहाँ पर बुहारी करते थे सीढ़ियों की, तो वो ब्रज के गलियों की बुहारी यानी झाड़ू लगाते थे, लेकिन इतना मग्न होकर झाड़ू लगाते थे कि उनको और किसी चीज की सुध-बुध नहीं थी। एक झाड़ू हाथ में, ब्रज की गली आंखों के सामने, और क्रिया जो है उसको साफ करने की। तो राधा रानी उनके सेवा की मग्नता, समर्पण, एकाग्रता से इतनी प्रसन्न हो गई कि जानबूझकर अपने पैरों का एक घुंघरू जो है छोड़ दिया उन्होंने वहां पर, ललिता को भेज दिया। तो आए उनके पास, बोले कोई घुंघरू मिला है आपको, बोले मिला जरूर है, वो दे दो हमें। उन्होंने कहा नहीं, जिनका है उसको भेजो। तो फिर ललिता जी राधा रानी को लेकर आई अष्ट सखियों के साथ, दूर पेड़ के नीचे दर्शन दिया, भाग के गए, भाव विभोर होकर चरणों में गिर के बेहोश हो गए। सब सखियों ने उनको होश में लाया, तब वो अपने दिव्य स्वरूप में आ गए, ये शरीर में नहीं जैसे हम लोग हैं, दिव्य शरीर में आ गए। तो राधा रानी ने वो नुपुर लिया उनका और उनके सर पे लगाया तिलक के रूप में, और कहा कि मैंने ये किया है, किसी को बताना नहीं। अरे बताएंगे कैसे, नहीं, वो तो ऑलरेडी आ गया ना सर पे, परमानेंट तिलक, लेकिन फिर भी कह रहे किसी को बताना नहीं। फिर उन्हें कहा कि आज से आपका नाम श्यामानंद, नाम भी चेंज कर दिया, ये भी किसी को बताना नहीं। तो सब सब सखियों ने उन पर रंग डाला, पूरा भाव विभोर कर दिया उनको, और फिर अंतर्धान हो गई राधा रानी। फिर जब होश में आए, देखा तो माथे पे तिलक, नया नाम, हाँ गुरु जी तक खबर पहुंच गई कि नाम भी चेंज कर लिया और तिलक भी नया तरीके का लगाता है। तो बहुत गुस्सा हुआ वो, और अंबिका कालना से यहाँ पर आए, बहुत पीटा उनको कि आप भ्रष्ट हो रहे हो, हाँ मेरे संप्रदाय के दीक्षा के नियमों को तोड़कर कुछ अलग काम कर रहे हो। इतना मारा उनको कि बाकी लोगों ने फिर रोका, महाराज रुको रुको, बेचारा मर जाएगा। उस रात में राजा रानी ने हृदय चैतन्य महाराज को स्वप्न दिया और बहुत डांटा उनको स्वप्न में कि मैंने ही ये तिलक उसको लगाया है और मैंने ये नाम उसको दिया है। इतना मार खा रहे फिर भी बोल नहीं रहे, क्योंकि आज्ञा दी हुई है ना, बताना नहीं है किसको। तो सेवक जो होता है ना, उसका समर्पण अपने सेवा के प्रति और सेव्य यानी जिसकी सेवा कर रहे हैं उसके प्रति इतना होता है कि वो मरने के लिए भी तैयार है लेकिन आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेगा। तो श्यामानंद गोस्वामी की जो सेवा में एकाग्रता थी और मग्नता थी वो बहुत लक्षणीय है हमारे लिए। और ऐसे कई उदाहरण हैं। एक दिव्य उदाहरण है श्री गिरिराज जी गोवर्धन का। उनकी सेवा थी कि भगवान को और ब्रजवासियों को वर्षा से बचाना, भगवान ने उनको उठाया था छतरी के रूप में। हम सब लोग पढ़ते हैं कि कैसे ब्रज के गोवर्धन के नीचे सारे ब्रजवासी कितने आनंद में थे। सभी लोग, सब प्रकार के वात्सल्य वाले, साख्य वाले, शांत वाले, सब रस वाले लोग अपने अंदर एक साथ होकर गोवर्धन के अंदर उन्होंने बहुत आनंद लिया। अरे सात दान, सात दिन सात रात क्यों, अगर 700 दिन और 700 रात भी वो चलता बरसात तो वो भी वैसे आराम से रहते उसके अंदर, कोई भूख नहीं, प्यास नहीं, निद्रा नहीं, कोई वेग नहीं, कुछ नहीं। लेकिन कोई ये सोचता नहीं है कि गोवर्धन पर्वत पर उस समय क्या बीत रही थी। गोवर्धन पर्वत पर ऐसी मूसलधार घनघोर प्रलयकारी, प्रलयंकारी मतलब जो प्रलय के समय गिरती है ऐसी भयंकर वर्षा गिर रही थी। ऐसा वर्णन आता है कि गोवर्धन के अंदर जितनी गुफाएं थी उसमें से शेर और सिंह और बाघ सब भाग रहे थे डर के मारे, हाथी सब भाग रहे थे। और ऐसे जीवन नाशक वर्षा गिरिराज के ऊपर हो रही थी जो पूरे ब्रज को समूल नष्ट करने के लिए भेजी गई थी। वो सारा कॉन्सेंट्रेशन गिरिराज के ऊपर था, पर गिरिराज ने कभी कंप्लेंट नहीं किया। अच्छा है आप लोग सब एंजॉय कर रहे हो, मैं यहाँ पर मेरी क्या स्थिति है। वो एक चीज के लिए धन्यवाद भावना में थे कि ठाकुर जी महाराज आपने अपनी उंगली का स्पर्श मुझे दिया है, सबसे छोटे शरीर के हिस्से का सबसे छोटा अग्र जो है वो आपने हमको दिया है, उसके द्वारा सारी कृपा, सारी दया, सारी शक्ति, सारी सहनशीलता, सारा धन्यवाद उसमें से आ रहा था, वन पॉइंट करंट। और उसके वजह से इतना कष्ट होने पर भी गिरिराज को शरीर से तो कष्ट हो रहा था लेकिन आत्मा से श्री गिरिराज गोवर्धन को एक तनिक मात्र भी कष्ट नहीं हुआ। उल्टे वो धन्यवाद की भावना में थे, थैंक यू वेरी मच, आप कितने कृपालु हैं भगवान, चाहे 700 दिन वर्षा होती रहे मैं ऐसे ही खड़ा रहूंगा, आप आराम से अंदर आनंद लेते रहो भक्तों के साथ। तो इसकी स्टोरी कहीं नहीं आती है कि गिरिराज के ऊपर क्या बीती। बाकी वर्णन तो सभी लोगों ने कितने अलग अलग रसों का आनंद लिया भगवान के साथ, वो सब वर्णन आता है। श्री गिरिराज अगर ये सब सहन नहीं करते और कृतज्ञ भाव में नहीं रहते तो नीचे ब्रजवासी आनंद नहीं लेते है ना। तो वैसे ही आपको थोड़ा मोटा कष्ट होगा इधर, लेकिन आप लोग उसको धन्यवाद की भावना से स्वीकार करेंगे तो जितने ब्रजवासी आपके छत्र छाया में आएंगे वो सब आनंद प्राप्त करेंगे है ना। किसी के दांत में दर्द है तो ठीक हो जाएगा, किसी के आंखों में तकलीफ है तो दर्शन होने लगेगा उनको। तो इस बारे में आप सोचना कि एकाग्रता, निश्चय और धन्यवाद की भावना, कृतज्ञता की भावना, ये जिसके अंदर है, जो व्यक्ति अपनी सेवा के विषय में कृतज्ञ है, आई एम ग्रेटफुल माई लॉर्ड, उस पर भगवान पूरी कृपा कर लेते हैं, उसी को भगवान के चरणों का आश्रय प्राप्त होता है, राधा रानी के चरणों का आश्रय प्राप्त होता है। इसलिए धन्यवाद ये सेवा, सेवा में कष्ट, उसकी सहनशीलता और उसके बाद धन्यवाद की भावना जब हम अपनाते हैं तो हमारी सेवा परिपूर्ण हो जाती है। और सेवा की परिपूर्णता का मतलब क्या है कि हमें पूर्णतः सही रूप में 100% राधा रानी के चरणों का आश्रय प्राप्त होता है। और उसका अर्थ क्या होता है, जिस व्यक्ति को राधा रानी के चरणों का आश्रय प्राप्त हुआ है वो निरंतर भगवान के नाम का जप करता है और उसे और अधिक सेवा प्राप्त होती रहती है। तो मैं ये निश्चित समझता हूँ कि आप लोग यहाँ पर बार बार आके सेवा करना चाहते हैं, तो ले लो, जिस बार मौका मिला है उसी बार अपने सेवा में समर्पित हो जाओ, एकाग्र हो जाओ। कष्ट हुए तो सहन करो, धन्यवाद करो। धन्यवाद के बाद में आपका यहाँ का आना, यहाँ का निवास, यहाँ की सेवा, सब कुछ सफल हो जाएगा। जय जय श्री राधे श्याम। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। आधा घंटे का समय दिया गया था तो इसलिए आधा घंटे में जो भी मुमकिन है बता दिया। आप सबको हमारी तरफ से सेवा के लिए शुभकामनाएं। सुबह मंगल आरती में मैंने राधा रानी से और श्याम सुंदर जी से आप सबके लिए प्रार्थना की है कि आपके शरीर को, खास करके आय सर्जन की उंगलियों को, मन को, बुद्धि को और आत्मा को राधा रानी शक्ति दें, ताकि आपकी सेवा बहुत उच्च दर्जे की, उच्च तरीके की हो और आप लोग सब राधा रानी के शरण लेने में सफल हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।